महाबंद
पुस्तक पहले लेक्चर नंबर 17।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सिद्धादद्धट्ठमला विशुद्ध बुद्धि अलद्ध सौवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भृडारया सर्वे।
यह श्री भगवान भूतबलि आचार्य रचित महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। उसमें पहले पुस्तक में हम प्रथम प्रकृति बंध अधिकार देख रहे हैं। उसमें अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 70 पर, 70।
आवाज कम है?
हाँ, यहाँ हम 70 पृष्ठ पर आए हैं। काल संबंधी अपना यहाँ प्रकरण चल रहा है, काल की प्ररूपणा। मार्गणाओं में, अलग अलग मार्गणाओं में हम विचार कर रहे हैं। ज्ञान मार्गणा की बात हो रही है। ज्ञान मार्गणा की बात हो, ज्ञान मार्गणा की बात अपनी चल रही है। उसमें अभिनिबोधिक ज्ञान की बात देखेंगे यहाँ पर। अभी नीचे से तीसरी लाइन मिलन, कल हमने कुमति कुशोत्तर को अवधि के बारे में बात देखी थी। यहाँ किसका काल देखना है कि उसमें विशिष्ट प्रकृतियों का बंध काल लगातार जघन्य और उत्कृष्ट कितना हो सकता है। अलग अलग प्रकृतियों में बात अलग अलग होती है, क्योंकि कितनी प्रकृतियां ध्रुवबंदी होती है, कितनी प्रकृतियां प्रतिपक्ष वाली होती है, एक समय में चेंज हो सकती है। कोई ऐसे अंतर्मुख से ज्यादा नहीं बनती है, तो उनकी अपेक्षा अलग अलग बात आती है। यहाँ हम अभी ये जो सम्यक ज्ञान है ना, अभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान, सुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में, इन तीन ज्ञान की बात यहाँ बता रहे हैं। तो ये सम्यक दृष्टि जीव है, तो कौन सा बंद करेंगे वो अभी ख्याल में लेंगे हम। तो पांच ज्ञानावरण, ज्ञानावरण ऐसे है कि पहले गुण स्थान से लेकर दसवें तक बनती है लगातार। छह दर्शनावरण, छह इसलिए लिए कि समय दृष्टि है, स्थान बुद्धि आदि तीन के बंद विचित दूसरे में हुए। चार संजोलन, अब ये इसलिए लिए कि इनका बंद तो सभी समय दृष्टि करते हैं जहां तक बंद है, परंतु चौथा वाला लेंगे तो तीन कषाय चौकड़ी का बंद करेंगे, पांचवा वाला लेके दो का कर रहे हैं, परंतु चौथा व पांचवा वाला संजोलन का तो कर ही रहा है, इसलिए सब में जो कॉमन है उसको यहां रखा। पुरुष वेद, भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, यानी ये सभी जीव पंचेंद्रिय जाति को ही बांध रहे, गति को यहां नहीं लिया है, क्योंकि देव है तो मनुष्य गति बांधेंगे, मनुष्य है तो देव गति बांधेंगे, नारकीय तो मनुष्य गति बांधेंगे, इसलिए उसकी बात अलग से करेंगे। तेजस कारमन शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण चार, अगुरु लघु चार, हमेशा अगुरु लघु उपघात ही लेते हैं, परंतु यहाँ पंचेंद्रिय जाति बांध रहे, पर्याप्त कर्म बांध रहे, इसलिए परघात उच्छ्वास को भी लिया है। जब तक समय दृष्टि तो उसके कंटिन्यूस बंध चलेगा, अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, ये अगुरु लघु चार आपको लिखना है ना, अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास। अब कहते हैं प्रशस्त विहाय गति, इसका भी कंटिन्यूस वही बंद चलेगा। मिथ्या दृष्टि तो कभी प्रशस्त कभी अप्रशस्त व्याहति बंद। त्रसचार, ये त्रसचार कौन से मंजू बहन प्रत्येक ये समय दृष्टि है बांध रहे ना। सुभग सुस्वर आदेय निर्माण उच्च गोत्र तथा पांच अंतराय का जघन्य बंधकाल अंतर्मूर्ख। जघन्य इसलिए लिए कि अंतर्मूर्त तक समय दृष्टि रहे, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त लिया। और उत्कृष्ट साधिक छासर सागर प्रमाण है। साधिक क्यों कहा, पहले औपचारिक समय तो प्राप्त किया, फिर वेदक समय दृष्टि रहा और बाद में क्षायिक हुआ, तो साधिक में ले लेना सबको मिले। हाँ मनुष्य में एक क्षायिक हुआ। हाँ नहीं 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 उनका क्या कहना है, उनको ऐसा कहना है पहले छासर सागर तक वेदक समय दृष्टि रहा, उसके अंत में मनुष्य में उन्होंने वो छासर सागर पूरे होने के आए तो क्षायिक हुआ और बाद में और एक तैतीस सागर का भोग किया। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा ऐसा? हाँ नहीं हो सकता है, तो फिर भी वो तो ज्यादा ज्यादा ले लेते यहाँ वैसे।
शायद उसमें आ जाता होगा छासर सागर, छासर सागर में आएगा तो शायद
नहीं, छासर सागर तो वेदक का ही, केवल वेदक का था।
हाँ बराबर है, पर वो छासर सागर बस फेमस भी इंक्लूडिंग
नहीं नहीं, हम देखेंगे ना आगे कहीं बात आ जाएगी उसकी। केवल सम्यक्त का काल है, उसमें क्षायिक को भी इंक्लूड करना है, ये तो बात निश्चित है। साधिक छासर सागर ही बताया है, उत्कृष्ट साधिक छासर सागर प्रमाण है। हम हमेशा 132 जो लेते हैं ना, तो समय मिथ्या तो में आया है। हाँ तो ये तो वहाँ अभिनिबोधिक श्रुति ज्ञान वो नहीं रहेगा, अपनी मार्गणा ख्याल में रखना है। कौन सी है, मति श्रुत अवधि ज्ञान की बात चल रही। अब यहाँ कहते हैं साता असाता वेदनिया, आवाज गई क्या है, आती है? हाँ 71 पेज पर आए हम। उत्कृष्ट साधिक छासर सागर प्रमाण, साता असाता वेदनीय, हास्य रति अरति शो आहार दिक, और स्थिरादि तीन युगल का। स्थिरादि तीन कौन से, तीसरा सुभग तो युगल की बात है, सुभग सुस्वर पहले ले लिया हमने, यशस कीर्ति होगा। स्थिर स्थिर शुभ अशुभ और यशस कीर्ति और यशस कीर्ति, क्योंकि वो जाके आगे जाके बंद विचित्ति होती है ना, दुर्भोग दूसरा अनादे के दूसरे में ही होती है, और अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति की तो ऊपर जाके छठे में होती है। यानी स्थिर युगल, शुभ युगल, और यशस कीर्ति युगल। जघन्य एक समय, यहाँ एक समय समझ में आता है, प्रतिपक्षी है वो तो चेंज हो जाता है एक समय के लिए परिणाम, तो एक समय के लिए बंद हुआ। और उत्कृष्ट अंतर्मूर तो बंद काल, अंतर्मूर से ज्यादा नहीं रहता, फिर वापस कभी स्थिर कभी अस्थिर कभी स्थिर अस्थिर। जब तक बंद विच्युति नहीं होती है तो अस्थिर अशुभ और अयशस कीर्ति की बंद विच्युति छठे में है, तो तब तक तो वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त वाली बात होगी, बाद में भी अंतर्मूर्त ही घटित होगा। साता की बात नहीं चल रही यहाँ पर, अन्य अन्य स्थिर अस्थिर की बात चल रही। अप्रत्याख्यानावरण चार, अब ये सम्यक्त्व में रहते हुए अप्रत्याख्यानावरण का बंद कौन करेगा, तो चौथे गुण स्तर में। तीर्थंकर का जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट साधिक 33 सागर, अश्विन में जघन्य अंतर्मूर्त घटित कर। नहीं नहीं तीर्थंकर का
किया और पीछे
कैसे अंतर्मूर्त तो कहाँ बंद किया, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ी,
दो बार उपशम श्रेणी नहीं तो अंतर्मूर्त में वो श्रेणी भी चढ़ सकता है ना,
वहाँ की बात कहाँ है अंतर्मूर्त में। आप अंतर की बात कर, किस
नहीं अंतर बंद की बात।
हाँ तो अंतर्मूर्त
का गुण स्थान प्राप्त किया, अंतर्गत प्रकृति का बंध चालू किया और अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ गया।
अच्छा उसी भाव की बात कर रहे हैं, उसी भाव की बात कर रहे
हैं।
यहाँ उन्होंने उपशम श्रेणी की अपेक्षा बात
की,
या इसे हो सकता है नरक जाने के पहले अंतर्मूर्त तक बंद किया।
दूसरे या तीसरे में जावे ना जाएगा,
यानी नरक में जाने के पहले मिथ्यात्व में जाता है, उसके पहले तो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ाएंगे क्या, एक बार उपशम श्रेणी चढ़े तीर्थंकर प्रकृति का बंधन रुक गया था, फिर नीचे आए फिर शुरू हुआ, फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़े एक शपक श्रेणी चढ़े वही तो। हाँ मैंने बंद शुरू किया और उपशम श्रेणी चढ़ती, देखो देखो इनका क्या कहना है, तो उपशम ही क्यों चढ़ाते, एक शपक भी चढ़ाओ ना। यहाँ हमें कम से कम काल जघन्य अंतर्मूर्त देखना, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक बार शुरू होता है जनरली तो कंटिन्यूअस रहता है, कहाँ तक, आठवें गुण स्थान तक। तो ये अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा, क्योंकि जिस भाव में बांधा फिर देव में गया, कोई नरक में गया वहां पर भी बांधता रहा, वहां से आया फिर यहां भी बांधता रहा, तो उसका उत्कृष्ट काल तो तीन तीन भाव तक चलेगा, क्योंकि वही 33 सागर में गए तो वहां पर भी बांधता रहा। हमें जघन्य काल घटित करना है, तो जघन्य काल ने एक बार बांधना शुरू किया तो रुकना तो चाहिए अंतर्मूर्त में, तो ये कब संभव है, तो एक बात ये कि कोई दो कल्याणक वाले तीन कल्याणक वाले जीव होते हैं, जैसे हमारे भरत क्षेत्र में तो पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, पूर्व भव से बांध के आए हैं, यानी मनुष्य में बांधना शुरू किया था फिर देव में गए और वहां से यहां आए और फिर गर्भ से ही लेकर बांधते रहे। कोई ऐसे भी होते विदेश क्षेत्र में खास करके कि अभी गर्भ भी हो गया जन्म भी हो गया, बाद में चौथे पांचवें गुणस्थान में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, तो बाद में उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक होगा, मोक्ष कल्याणक होगा। ऐसे भी है कि मुनि हो गए और बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो तो मुनिराज है तीर्थंग प्रकृति बांधना शुरू किया है उन्होंने, फिर उनके दो कल्याणक हो जाएंगे। तो यह अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा? तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, छठे सातवें में थे, और फिर श्रेणी चढ़ी अंतर्मूर्त में, तो आठवें के बाद तो बंध रुक गया, तो एक अंतर्मूर्त घटित हुआ। तो हमने दो तीन पद्धति से विचार किया। एक तो बांधना शुरू किया अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ी, कौन सी उपशम श्रेणी चढ़ी मान लेते, तो एक बात। दूसरे हमने सोचा कि उपशम की क्या जरूरत है, हम क्षपक श्रेणी चढ़ाएंगे अंतर्मूर्त में, वो दूसरी बात हुई। तीसरी बात, एक बार इन्हें पहले से कंटिन्यूएशन मान लेते बांध रहा था, जैसे हमारे यहाँ बड़े क्षेत्र के जो कुछ जन्म से लेकर बांध रहे थे गर्भ से ही लेकर, उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी तो रुक गए थे बंधना, फिर नीचे आए, और नीचे आकर क्षपक श्रेणी चढ़ी, दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ी, तो अंतर्मूर्त के लिए बंद करके फिर वापस श्रेणी चढ़ी, तो बंद रुक गया। तो उसको आदि हुई थी ना बांधने के लिए, उपशम श्रेणी से नीचे उतरे तब आदि हुई थी, दोबारा श्रेणी चढ़े तो बस बंधना रुक गया। अंतर्मूर्त तक मिनिमम जगन्या ने मिनिमम बंध काल घटित हो गया, परंतु ऐसा एक समय वाला घटित नहीं होगा, अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। हाँ, वहाँ हम सोच रहे थे कि नरक में जो पहले नरकायु बांधी, फिर कोई सम्यक दृष्टि हुआ, और सम्यक दृष्टि होकर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, क्षायिक नहीं हुआ है, क्योंकि क्षायिक होता है तो सम्यक तो के साथ चला जाएगा और कंटिन्यूएशन में तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा। हमें ऐसा चाहिए कि क्षायिक नहीं है मगर वेदक रहा, तो मरण के पहले वो मिथ्यात्व में जाएगा, फिर नरक में जाकर फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा। तो ये मिथ्यात्व में जाके मरेगा, उसके एक अंतर्मूर्त पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया हो तो ऐसे अपना विषय चल रहा। तो अरविंद भाई का कहना है वहां तो इतनी विशुद्धि है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया है, और तत्काल वो मिथ्यात्व में जाए और नरक में जाए, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम नहीं कह सकते। तो यानी तीर्थंग प्रकृति का बंध करने वाले की विशुद्धि बहुत ज्यादा होती है, ऐसा यानी हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। इन्फरेंस तो हम नहीं निकालेंगे, हम अलग अलग उसके ऊपर हम विचार करते हैं क्या हो सकता है, इसके हमने पॉसिबिलिटीज देखी। अब तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट लगातार उत्कृष्ट बंध कितना है, तो साधिक 33 सर, 33। देखो कुछ साधिक 33 सागर अभी घटित करेंगे, मनुष्य भव में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू होता है, देव में शुरुआत प्रारंभ नहीं होती। तो 33 सागर वाले देव की उत्कृष्ट आयु लेनी है, उसके पूर्व मनुष्य भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, तो वो अर्लीएस्ट कब कर सकता है, तो करोड़ पूर्व की आयु लेना, और सम्यक तो भले पहले से समय दृष्टि था ऐसा भी हम ले सकते हैं, आठवें साल के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया, चलता रहा पूर्व कोटि तक बांधा, फिर संयमी हुए सर्वार सिद्धि में गए 33 सागर तक, वहां तो तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहे, वहां से आए फिर करोड़ पूर्व की आयु में उत्पन्न हुए, फिर कब तक तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे, जब तक क्षपक श्रेणी चढ़कर आठवें गुणस्थान पार नहीं करेंगे, उसका भी बाद में अंतर्मूर्त नहीं रखना है, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले जीव है, अंतर्मूर्त में 13वां गुणस्थान पार नहीं करेंगे, कुछ साल तो वहां रहेंगे 13वें गुणस्थान में, तो जितना यथा योग्य काल है क्षपक श्रेणी चढ़ने के लेकर आगे वाला, वो माइनस करना पूर्व कोटि में से, पहले 8 वर्ष माइनस किए थे, यहाँ जो यथायोग्य काल है वो माइनस करना, तो साधिक 33 सागर होगा। 33 सागर के पूर्व भव में भी बांधी थी और फिर बाद में भी बांध रहे, इस तरह से साधिक 33 सागर तीर्थंकर प्रकृति बांधने का उत्कृष्ट काल होता है। अब उसके साथ अप्रत्याख्यानावरण चार भी लिया है, तो अप्रत्याख्यानावरण चार लेना है तो उसमें तो अभी तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो चौथे वाले भी बांध रहे थे, छठे सातवें वाले भी बांध रहे थे। सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले तो संयम ही जाते हैं, यानी जाने के पूर्व, यानी 33 सागर की शुरुआत हुई उसके पहले मनुष्य में थे तभी नहीं बांध रहे थे अप्रत्याख्यानावरण। क्यों? छठे सातवें वाले वहां जाते हैं, हाल में आती बात, तो उसका बंधन नहीं कर रहे थे तभी, वहां जाने पर चौथा गुणस्थान हुआ तो अप्रत्याख्यानावरण का बंध कर रहे, वहां से मां के गर्भ में तो वहां पर वहां भी 8 साल तक तो चौथा गुणस्थान रहेगा ही रहेगा, हो सकता है अधिक काल तक भी रहेगा। तो यहां अप्रत्याख्यानावरण के लिए साधिक 33 सागर इस प्रकार से घटित होगा। अलग अलग प्रकृति में अलग अलग सोचना है, संयमियों के तो नहीं बंधेगी, तो वहां जाने के पूर्व तो संयम था तो वहां शुरुआत की अप्रत्याख्यान, देव में जाने के बाद पूरे 33 सागर तक बंद होता रहा, वहां से आए चौथे गुणस्थान, 8वें तक तो चौथा गुणस्थान ही रहेगा, हो सकता है अधिक लंबे काल तक भी चौथा गुणस्थान, बाद में ही संयमी हो गया, क्योंकि 33 सागर की आयु से आए हैं तो संयमी होकर उस भव में मोक्ष तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये साधिक में कुछ वर्ष बढ़ा देना, ये दो बातें ख्याल में आई। अब प्रत्याख्यानावरण का जघन्य बंध का तो अंतर्मूर्त, प्रत्याख्यानावरण कहाँ बनती है? पहले से लेकर 5वें तक बनती है, अभी यहाँ 4-5 लेने कहाँ बनती है हमने पूछा, तो पहले से लेकर 5वें तक। अब यहाँ अपनी मार्गणा कौन सी चल रही है? मति शुद्ध अवधि वाली सम्यक दृष्टि है, तो 5वें गुणस्थान में बंध के लिए अंतर्मूर्त कैसे घटित करना? पहले नहीं, चौथे वाले को लेगे तो वहां भी बंध रही थी, 5वें वाले को भी बंध रही है। अब वो कोई संयमी जीव एक अंतर्मूर्त के लिए चौथे या 5वें में आए तो प्रत्याख्यानावरण का बंध किया, फिर संयम प्राप्त किया तो अंतर्मूर्त के लिए बंध हुआ, ये जघन्य। तो प्रत्याख्यानावरण काल का उसका बंध जघन्य अंतर्मूर्त। अभी उत्कृष्ट बंध हमको देखना है, तो उत्कृष्ट साधिक 42 सागर प्रमाण है, अथवा कुछ अधिक 33 सागर बंध काल जानना चाहिए, कुछ अधिक क्योंकि जो चौथे गुणस्थान वाला है वो प्रत्याख्यानावरण का भी बंध कर रहा है, अकेले 5वां वाला नहीं कर रहा, चौथा वाला भी कर रहा है, तो जैसे हमने अभी 33 सागर में घटित किया वैसे भी यहां हो सकता है, या साधिक 42 सागर प्रमाण, दो भव किए देव के मनुष्य देव, देखो
ये दो भव तो मनुष्य का, देव का और नारकी का, अच्छा वो भी देख सकते,
चौथा गुणस्थान रखना है। तो यानी 66 सागर क्यों नहीं रखा ऐसा? 66 सागर में तो उनको 5वां गुणस्थान नहीं लेना, चौथे वाला भी बांध रहा है ना, और 42 सागर में ऐसा लेना है, 20 और 22 सागर का ऐसा कुछ ले लेंगे,
22 है
अच्युत का, 22 है ना, क्योंकि वहां ऐसा भी लेना है कि यहां भी उसको मतिशुद्ध ज्ञान तो होने में कोई बात नहीं, अवधि ज्ञान भी उसके रहना चाहिए, अवधि ज्ञान के लिए भी ये घटित कर रहे हैं, देव में तो नियम से रहेगा ही रहेगा, मनुष्य भव में भी वो रहे ऐसा लेना है, यानी बीच वाले मनुष्य भव में उसको अवधि ज्ञान था ऐसा लेना है, अवधि ज्ञान को भी लेना है ना साथ में, कंटिन्यूस अवधि ज्ञान रहना चाहिए, देव में ही गया तो सम्यक तो साथ गया तो वहां अवधि ज्ञान रहेगा ही रहेगा, और ये ऊपर के स्वर्गों में नहीं भेजना क्योंकि वहां बीच में संयम ही होना पड़ेगा, और संयम धारण करेगा तो प्रत्याख्यानावरण का बंध नहीं होगा, तो प्रत्याख्यानावरण का बंध हो रहा है, यानी चौथे 5वें के ऊपर नहीं भेजना उनको, मनुष्य में 5वें तक भी जा सकता है, हाँ 5वें वाला अच्युत तक है, हाँ आनंद प्राण तारण अच्युत सोलवे स्वर्ग
दो बार
अब भेजेंगे एक बार 20 सागर का एक 22 सागर का हाँ उसमें है ना अधिक से अधिक कितने काल तक जाता है वगैरह तो इसलिए अथवा करके दो पॉसिबिलिटीज बताए दो आयु का ओह के समान है मेरा सवाल है ये दो आयु कौन सी होनी चाहिए प्रेरणा भी आप बता 3 इंच अच्छा देव हाँ तो क्या समय दृष्टि केवल मनुष्य में होते है क्या आयु का कौन सा बंद करेंगे मनुष्य है वो देव का बंद करेंगे तीर्यंच समय दृष्टि है वो देव का बंद करेंगे और देव और नार की समय दृष्टि मनुष्य का करेंगे तो दो ही आयु लेनी है मनुष्य आयु और देवायु तो ओह के समान है ना उसका जघन्य भी और उत्कृष्ट भी बंद काल जो है अंतर्मुख का है मनुष्य गति पंचक का जघन्य बंद काल अंतर्मुख मनुष्य गति पंचक याद है मनुष्य गति हाँ हाँ आपको याद है हाँ बोलो बोलो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी सुनो उसको हाँ आयु नहीं लेना उसके शरीर कौन सा है औदारिक अंगोपांग वज्र ऋषभ नारासन है ये पंचक हुआ आयु को तो अभी हमने देख लिया अलग से तो जघन्य बंद काल अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतर्मूर्त तक समय दृष्टि रहा मनुष्य गति बन रहा है समय दृष्टि को मनुष्य गति बन रही है यानी कोई
यहाँ पे जो मनुष्य है वो दिन प्रति लाती है
अंतर्मूर्त के लिए समय दृष्टि हुआ नीचे के नहीं सहस्रार के नीचे जहाँ 3 इंच गति भी बनती है दो ऑप्शन है ना नारके में भी घटित होगा क्योंकि समय मतिशुता अवधि तीनों एक साथ ले लो या अलग अलग ले लो तो भी घटित तो होगा फिर से भेजो ये क्या कहते हैं समय दृष्टि है तो कंटिन्यूअस मनुष्य गति बांधेगा अभी देव समय दृष्टि है नार की समय दृष्टि तो कंटिन्यूअस बांधेगा तो अंतर्मूर्त कैसे होगा तो अंतर्मूर्त के लिए ही समय दृष्टि रहा मिथ्यात्व में गया तो 3 इंच गति बांधी ऐसा हो सकता है ना मार्गणा उसकी अंतर्मूर्त तक रह सकते उसका मतिशुद्ध अवधि ज्ञान अंतर्मूर्त तक रहा तो तब तक तो मनुष्य गति बांधी छुटकर मिथ्या तो में गया तो उसके मार्ग नहीं चेंज हो गए भले मनुष्य गति भी मिथ्या तो में बांध सकता है ना ऐसी बात नहीं है परंतु यानी ये तो ऊपर भी घटित होगा फिर ग्रहवेक आदि में भी घटित होगा अंतर्मूर्त के लिए समय दृष्टि हुआ फिर बाद में मिथ्या दृष्टि हुआ बांध लेंगे ना पर बाद में मिथ्या तो में जाके बांध रहा है पहले समय दृष्टि में अपनी मार्गणा है हाँ ग्रेवेक के सभी कंटिन्यूअस मनुष्य गति बांध रहे परंतु अभिनिबोधिक श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान अपना क्राइटेरिया है तो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक दृष्टि रहा कोई ग्रेवेक वाला
मनुष्य भी गठित नहीं होगा मनुष्य प्रतिशुद्ध अवधि ज्ञान वाले
उसकी बात वो मनुष्य गति बांधेगी ही नहीं उसकी बात ही नहीं है जो बांध रहे उनकी बात है अपनी क्राइटेरिया कौन से चल रहे हैं मतिशुद्ध अवधि ज्ञानी वाला चाहिए ये बात क्या में आई मनुष्य गति संबंधी कि नहीं आई
थोड़ा
थोड़ा सब जानो अब ये मतिशुद्धता उद्यानी समय दृष्टि है तो समय दृष्टि मनुष्य गति बांध रहा है ये कहाँ होगा पहले आप बताओ 3 इंच समय दृष्टि देवगति बांधेगा मनुष्य समय दृष्टि देवगति बांधेगा कंटिन्यूअस, कहाँ होगा? देव और नार की समय दृष्टि है, वो मनुष्य गति को बांधेंगे। जब तक समय तो चलता रहेगा तब तक मनुष्य गति को बांधेंगे। अब यहाँ क्या बताया, जघन्य तो अंतर्मूर्त बताया, इसका अर्थ क्या है? अंतर्मूर्त तक समय दृष्टि रहे, बाद में मिथ्या तो में चले गए, अपने मार्ग ना बदल गई। बाद में हम कुअवधि कहेंगे, कुमति कहेंगे, कुश्रुत कहेंगे, हमें तो जब तक वो मति श्रुत अवधि सम्यक ज्ञान है तब तक अंतर्मूर्त तक रहे, तो अंतर्मूर्त तक उन्होंने मिनिमम मनुष्य गति का बंधक किया, उसमें वो पंचक ले लिया। अब कहते हैं उत्कृष्ट 33 सागर देव है, 33 सागर तक समय दृष्टि है, तो कंटिन्यूअस मनुष्य गति का बंद कर रहे, वहां से मनुष्य में आएंगे तो देव गति का बंद करने लगेंगे, तो इनकंटिन्यूटी लेना चाहिए, इसलिए यहाँ 33 सागर पूरा लिया। नारकी में अगर देखना है नारकी समय दृष्टि सातवें नरक का, तो कुछ कम करना पड़ेगा, हम मिथ्यात्व में जन्मे हैं, तो शुरू के 3 अंतर्मूर्त के लास्ट के 3 अंतर्मूर्त घटाने पड़ेंगे, और हमें उत्कृष्ट काल घटित करना है, तो ये कौन सा लेना है? हाँ, सर्वार सिद्धि वाले देव, ये उत्कृष्ट काल ख्याल में है। अब देवगति चतुष्क का, ये देवगति चतुष्क मालूम है मंजू बहन? हाँ, बहुत अच्छा। हम जब गति कहते तो उसके साथ कौन सा शरीर बनता है उसको याद रखना। तो देवगति चतुष्क का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट साधिक 3 पल्ले बंध काल है। अब ये समय दृष्टि है, अभी आपको ही सोचना है तेजल। अश्विन भाई आप बिल्कुल मौन रखेंगे, आपको व्रत देंगे हम मौन का। तो देवगति बांध रहे नहीं, कौन से मतिशुता अवधि ज्ञानी है, समय दृष्टि है, और वो देवगति का बंध, जब तक समय दृष्टि है तब तक तो देवगति का बंध कर। ऊपर हमने अंतर्मूर्त के लिए उनको सम्यक्त्व में लाया था, बाद में भेज दिया उनकी मार्गना बदल के। तो अभी ऐसा कोई एक समय के लिए सम्यक्त्व ये तो बन नहीं सकता, तो एक समय का ही देवगति का बंध किया, फिर नहीं रहा, ये कब होगा आपको सोच कर बताना। यानी देवगति का बंध नहीं कर रहा था, फिर कर रहा है, और फिर अन्य गति का बंध शुरू करेगा, तो क्या कारण हो सकता है? आप सोच सकते हैं? प्रेरणा बेन आप कहेंगे? हाँ, कैसे मर, कैसे
देवगति ने एक समय पहले उसने समय दृष्टि था तो मनुष्य गति बांध रहा था, और फिर मर के दूसरी गति,
तो कंटिन्यूस देवगति बांधेगा ना? देवगति एक समय के लिए बांधनी चाहिए। मयंक भाई आप ट्राई करेंगे?
एक समय देवगति बांध रहा था,
नहीं अभी पहले नहीं बांध रहा था, फिर एक समय के लिए बांध दिया। हाँ बोलो, तो पहले नहीं बांध रहा था वो कब होगा? यानी समय तो प्राप्त करके एक समय में कोई मरता नहीं। हाँ बहुत अच्छा। पहले देवगति का बंध कहाँ तक है? 8वें गुणस्थान के 6वें बार उपशम श्रेणी चढ़ के ऊपर गए, देवगति का बंध रुक गया। मतिशुता अवधि ज्ञानी तो है वो, फिर वापस उतरते समय वो बंध प्रारंभ हुआ और एक समय में मरण हुआ, तो देवगति कितने समय तक बंधी? शादी हुई ना उसकी, एक समय के लिए बंधी। अब मरकर देव हुआ तो वहां मनुष्य गति बांधने लगे, विग्रह गति से उन्होंने मनुष्य गति बांधना प्रारंभ किया, एक समय के लिए देवगति बंधी। ये उपशम श्रेणी की व्यवस्था मनुष्य में है, देव में ऐसा नहीं था। देव में तो अंतर्मूर्त के लिए समय तो प्राप्त कराया था, तो मनुष्य गति का पंचक अंतर्मूर्त के लिए जघन्य काल हुआ था बंध का, और यहाँ देवगति का बंध एक समय इसलिए घटित हो सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते हुए एक समय के लिए बंध किया और मरण हो गया। हाल में बात, भले वो समय दृष्टि रहा फिर भी अभी वो देव मनुष्य गति का बंध करने लगा। तो देवगति चतुष्क का जघन्य एक समय, इन्हें उपशम श्रेणी उतर कर उतरते हुए मरण अपेक्षा। अब देवगति का बंध कंटिन्यूअस कोई करे तो कितना उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य। तो साधिक तीन पल्य कैसे गठित करेंगे हम? भोग भूमि में तो साधिक में कितना असाधिक करना, हाँ कितना अंतर्मूर्त लेना, कितना लेना? पहले भोग में कितना लेना आप कहेंगे? हाँ पूर्व कोटि का वन थर्ड। हाँ देखो क्या क्यों वन थर्ड क्यों लेना? हाँ तो आयु बंदी और क्या हुआ फिर? आप सही है परंतु देखो देखो ये भोग भूमि में भेजना है तो मनुष्य आयु तो बांधनी है, तो वो अर्लीस्ट कब बांधी उसने? पूर्व कोटि के वन थर्ड बाकी था तभी उसने आयु बांधी। केवल आयु बांध के नहीं चलेगा, ये आयु बंदी और मिथ्या दृष्टि रहा तो कोई फायदा नहीं ना, कंटिन्यूस देवगति तो नहीं बंधेगी। तो मनुष्य आयु बांधने के बाद वो सम्य दृष्टि हुआ तो वो देवगति कंटिन्यूस बांध रहा। अभी केवल समय तो प्राप्त करके नहीं चलेगा, उसको क्षायिक भी होना है। तो ऑर्डिनरी समय दृष्टि एक क्षायिक है, वो तो देवगति ही बांध रहा, यानी उसने क्षायिक समय तो भी प्राप्त किया। अब मरकर भोग भूमि में गया, क्षायिक समय दृष्टि है तो समय दृष्टि है तो कंटिन्यूस देवगति बांध रहे वहां, यानी पहले वंतर पूर्व कोटि लिया और फिर तीन पल्ले तक देवगति का ही बंध किया। समय दृष्टि एक क्षायिक समय दृष्टि है, समय तो छूटने का सवाल नहीं है, वही देव में गया। अब वो मनुष्य गति बांधेगा तो इसका साधिक कितना लिया? तीन पल्ले प्लस साधिक में पूर्व कोटि का बंतर कुछ कम उसमें। ना 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 उत्तम भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि होते है ना, परंतु जो सम्यक दृष्टि होते वो क्षायिक होने चाहिए।
क्षायिक तो के साथ भेजना है।
हाँ और साधिक तीन पल्ले करना है।
तो ऐसा भी हो सकेगा दृष्टि है।
हाँ
आपकी बात है कि वो देवगति
नहीं, अगर देवगति बांधता
नहीं
नहीं मैं मेरा कहा अगर मिथ्या दृष्टि को साधिक अंतर्मूर्त भी पहले उसको देवगति का बंध करना है तो वहाँ मिथ्यात्व में उत्पन्न होने वाला अभी सम्यक में उत्पन्न होने वाला भी कपोतलेशा में जन्मता है, तो मिथ्यात्व में जन्मने वाला तो नियम से अशुभ लेशा में मरकर वहाँ जन्मेगा और फिर वो देवगति का बंध करेगा ही, ऐसी बात नहीं हो सकती। अभी ये भी कपोत वाला तो कर ही रहा था परंतु मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त अवस्था में भोग भूमि में देवगति का बंध नहीं होगा, तो बीच में ब्रेक हो गया ना उसका जाने के पहले, भले भी उसने किया होगा। मिथ्यात्व के साथ अपर्याप्त अवस्था में हमने देखा था पहले शाम को अपने कर्मकांड में बंध की बात की थी, तो वहां जो शरीर विग्रह गति है, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक का, उसको देवगति नरक गति नहीं बनती है, ये नियम है। तो वहां कौन सा बंध करेगा? मनुष्य गति का जो कुछ यथायोग्य बंध करेगा उसको, मिथ्या दृष्टि साधन के लिए यह कंडीशन है। तो इसलिए उसके सम्यक तो कैसा पूरा तीन पल्ले लिया ही लिया और क्षायिक के साथ यानी पहले भी सम्यक दृष्टि था तो यहां भी किया, इसलिए साधिक तीन पल्ले हो गया कंटिन्यूस वो देवगति बांध। अभी क्षायिक है तो अभी वहां से वो सौधर्म ईशान में जाएगा और वहां मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा क्योंकि क्षायिक अधिक काल भटकता है, नहीं बनती कहीं पर भी, यानी मनुष्य तीन इंचों के लिए ये रूल है, देव नर के तो नहीं बांधते, कभी भी नहीं बांधते। और ये कहां के लिए? मिथ्या दृष्टि साधन में ये रूल है, क्योंकि अभी जो सम्यक्त के साथ मां के गर्भ में आए वो तो अपर्याप्त अवस्था में भी देवगति बांधेगी, समय दृष्टि बांधेगी। जैसे ये भोग भूमि में जाने वाला समय दृष्टि है तो वो अपर्याप्त अवस्था में भी देवगति बांधेगा। हाँ, इसीलिए वो तो कंटिन्यूटी मिली ना उसको, शायद पूर्व में भी बांध रहा था और अभी भी बांध रहा था। उसको सम्यक्त्व के साथ नहीं भेजेंगे तो अपर्याप्त अवस्था में माइनस करना पड़ेगा, कुछ कम तीन पल्ले कहना पड़ता। देखो देवगति का हमने देख लिया, अवधि दर्शन में इसी प्रकार जानना चाहिए। ये दर्शन मार्गणा की अपेक्षा अवधि दर्शन, जैसे अवधि ज्ञान में है वैसे अवधि दर्शन में है। कितने ही जीव जो क्षायिक के साथ उत्पन्न होते हैं ना, वो अवधि दर्शन के साथ, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन के साथ भी वहां जाते हैं, भोग में है। स्पेशली ये जो कुलकर आदि वहां उत्पन्न होते हैं, कुलकर मालूम है ना, सुना है कि ना? हाँ, यहाँ पहले उत्तम भोगभूमि थी, यहाँ भरत क्षेत्र में, यहीं पर दूसरा काल आने मध्यम शुरू हुए, फिर जघन्य भोगभूमि, फिर चौथा काल आने वाला है, तीसरा काल समाप्त होने को आया है। तो बहुत सारे भौगोलिक चेंजेस भी हो जाते हैं और अनेक जो कोई डेली रूटीन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वहां ये कुलकर उत्पन्न होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो जिन्होंने ऐसे पहले क्षायिक प्राप्त करके भोगभूमि में आए, इसका अर्थ है जघन्य भोगभूमि में भी आते हैं कुलकर। अवसर्पिणी की बात करें, तीसरे चौथे काल की बात है। हाँ, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में, उल्टे काल में वो कुलकर ने अवसर्पिणी में आते हैं, वो तो क्षायिक ही होते हैं। हाँ, वहाँ तो चढ़ता काल है, वो तो यानी बहुत छोटे काल में उत्पन्न होते हैं, यहाँ तो बहुत लंबा काल है। अवसर्पिणी में तो उनका काल लंबा है, उस सर्पिणी में छोटे काल में केवल हजार वर्ष बाकी रहे तभी उत्पन्न होते हैं। हाँ, पंचम काल में कुलकरों में क्षायिक नहीं हो गए, जन्म नहींगे नहीं, परंतु यहाँ भोग भूमि के तीसरे काल में है। देखो कुलकर, हम तो अवसर्पिणी की अपेक्षा बात करते हैं, तीसरा काल जघन्य भोग। हाँ, वही तो बता रही हूँ मैं, कुलकर ने जो अभी पहला दूसरा भोग भूमि थी, अब यहीं पर कर्मभूमि आने वाली है। पहले कल्प वृक्षों से प्रकाश भी इतना था कि सूर्य चांद दिखते भी नहीं थे, तारे कुछ नहीं दिखते थे, बस ये कल्प वृक्ष का ही प्रकाश था, उनसे ही सभी चीजें मिलती थी। यानी उनको कोई ऐसे जीवन यापन करने के लिए कोई कमाना धमाना काम करना ऐसा कुछ नहीं था, बस विषयों की बहुत प्रचुरता और उनके भी उसमें रुचि, तो ये ऐसे जीवन चलते थे। क्योंकि बच्चे होते ही माँ बाप मर जाते थे, तो पाप से बचते थे, नहीं समझे? जो ज्यादा पाप क्यों करता है, पुत्र मुंह में करता है। तीव्र अपने लिए कहाँ, उसको खाने के लिए फुर्सत नहीं है, अपने लिए ये क्यों कमा रहे हैं, बच्चों के लिए। अपने लिए तो पाप कमा रहा है और बच्चों के लिए पैसा कमा रहा है, नहीं समझे? वहां तो क्या होता है भोग भूमि में, जुगलिया जन्मते हैं और उसका मुंह देखे बिना ही माँ बाप मर जाते हैं। पहले कल मुझे ये बात स्ट्राइक हुई, पहले किसी ने पूछा था कि बाकी तो अवशेष मिलते हैं, ये बड़े बड़े हड्डी प्राणी, मनुष्यों की क्यों नहीं मिलती, इतने बड़े बड़े शरीर होते थे। तो भोग भूमि में ऐसा नियम है, मरण होता है, पुरुष तो छींक से मरते हैं और स्त्री को जमा यानी योनिंग मरण हो जाता है, और मरते हैं तो जैसे मेघ विलय हो जाता है ना, ऐसे शरीर भ्रूर हो जाता है, उसका कुछ भी अवशेष नहीं रहता, ना नख ना हड्डी कुछ नहीं रहता, बाल तक नहीं रहता, तो ये विलीन हो जाते हैं, ऐसे वो परमाणु बिखर जाते हैं। तो अवशेष रहने का सवाल नहीं है, भले वहां सारे ही वज्रवृषभ नारा सहनन वाले होते, स्त्री भी और पुरुष भी। तो इसलिए वहां तो दो जन्मे और ये दो मर गए और वो 49 दिन में बड़े हो जाते हैं माँ बाप के बिना, और हम क्या समझते हैं, हम नहीं होते तो हमारे बच्चों का कौन करते है ना. हाँ तो जब ये तीसरा काल अंत होने लगता है तो पहले पहले क्या होता है, वो प्रकाशमंद होने लगता है, सूर्य चांद दिखने लगते हैं, ये क्या आपत्ति आ गई, इसे डर जाते. फिर उनको समझाते कुलकर, ये कुलकरों की बात है. तो ये कुलकर कौन होते हैं, कभी हम तीसरे काल की अपेक्षा बात करें, उत्सर पीने में अलग नियम लगा लेंगे. ये उत्तरता काल है, भोग भूमि से कर्म भूमि आने वाली है. उनके जो कोई चीजें मिलती थी अभी वो तो उसकी स्केयरसिटी हो जाएगी. पहले बहुत सारे फल फूल जो कुछ है, खाने का आहार भी वस्त्र भी सब कल्प वृक्षों से मिलते थे. अब उनके तो प्रकाश भी मंद हुआ, फिर तारे भी दिखने लगे, लोग भयभीत होने लगे, उनको समझाया. फिर कम मिलने लगे कल्प वृक्षों से, तो फिर अभी वो कौन खाएगा, तो आपस में झगड़े वगैरह शुरू है. तो उन्होंने सीमा बांध ली, जैसे मुझे ये देश तेरा, इस यहाँ का जो है वो तुम खाओगे, यहाँ के लोग खाएंगे, आपस में इन्हें स्ट्रेस पासिंग नहीं करना, अपनी अपनी मर्यादा में वहां सीमा बांध कर ले. फिर उसमें भी और ज्यादा ज्यादा होने लगे उसकी बातें, एक एक खुलकर हुए तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई. फिर वहां तो पहले प्राणी भी भद्र परिणामी थे, सिंहादि, क्योंकि वो तो भोगभूमि वाले थे. अभी उनके भी परिणाम कैसे क्रूर परिणामी होने लगे, फिर उनसे कैसे बचना आदि का ट्रेनिंग उन लोगों को सिखाया. फिर वो प्राणी और ज्यादा क्रूर हो गए तो किस तरह से उसका उपाय करना, या कुलकरों ने उनको जो बांधने की या जो कुछ व्यवस्था कर दी, दंड देने की व्यवस्था कर दी. इस तरह से एक 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 आगे बढ़ते गए, तो फिर उनको आगे चलकर वो कृषि मसीह वगैरह सिखाएंगे. अभी बहुत सारी बातें ऐसी बीच बीच में होती गई तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया. पहले तो बच्चों का मुंह देखे बिना तो माँ बाप मर जाते थे. आठवें कुलकर के बाद तो ये ऐसी परिस्थिति पोजिशन आ गई कि माँ बाप है और बच्चों के अभी ये क्या करना उसका. पहले तो मर ही जाते थे, अभी बच्चा दिखा तो घबरा गए क्या करना है इसका, क्योंकि पल्ले उनकी आयु थी उनकी और कुछ नागराज के अभी टाइम है. हाँ न लास्ट में नाभिराय ने चौदहवें कुलकर, हाँ वो समय दृष्टि, शायद समय दृष्टि है. और कितने ही तो जाति स्मरण वाले, उन्होंने कैसे, क्योंकि वो कर्म भूमि से आए हैं ना, तो उनको ये पता है. नहीं मगर यहाँ कर्म भूमि नहीं थी, परंतु विदेह क्षेत्र में थी ना, वहां से मरकर यहाँ की भूमि में आ गए. वहां तो हमेशा चौथा काल है, वहां कोई जीव मरे, यानी मनुष्य आयु बांधी थी, शायक हुए थे और यहाँ तीसरे काल के अंत में जन्म लिया उन्होंने. और उनको तो वो तो अवधि ज्ञान से या जाति स्मरण से उनको पता था कि कैसा कर्मभूमि में कैसा वातावरण होता है, लोग कैसे जीते हैं, तो वो तो पूर्व भव से उनको पता था, अवधि ज्ञान से भी और जाति स्मरण से. किसी किसी पल्ले का आठवां भाग शेष था तब पहला कुल करो, आठवां भाग शेष था तब पहला कुल करो. चौदह कुलकर होते हैं. हाँ पहले इस बार
कुलकर सिर्फ कर्म इसमें थर्ड काल में रहते,
तीसरे काल ऐरावत और भरत में वो अवसर पीने की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ भोग भूमि से कर्म भूमि में आते हुए क्या होता है. तो पहले पहले की आयु भी उनकी ज्यादा थी और बीच वाला अंतर भी बड़ा बहुत था. पहले और दूसरे कुलकर के बीच में तो पल्ले का 80वां भाग इतना बड़ा अंतर था दो में, आगे आगे अंतर भी थोड़ा हो जाएगा. आगे तो उनका अंतर भी कम हो जाएगा और कुलकरों की भी आयु घटती चली जाएगी आगे आगे, क्योंकि अंत में आए ना, अभी शुरुआत में एक पल्ले प्रमाण आयु थी, वो घटते घटते थी, लास्ट में तो कर्मभूमि के बराबर होने के, यानी करोड़ पूर्व से कुछ ज्यादा रह जाएगी. तो इस तरह से आगे फिर बच्चों का मुंह देखते थे क्या करना उसके लिए, बाकी था तब पहला खुलकर जानना. पल्ले की दसवें भाग प्रमाण ऐसा कुछ थी, आयु उसके पल्ले के दसवें भाग प्रमाण. पहले और दूसरे कुलकर के बीच का अंतर पल्ले का 80वां भाग प्रमाण, फिर आगे आगे वाले कुलकरों की आयु और छोटी होती चली जाए, अंतर भी कम कम हो जाए, तो फिर बच्चों का नहीं, बहुत बड़ा अंतर होता है ना बीच में। जैसे एक हो गया, उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को ट्रेनिंग दिया, लोग वैसे वैसे रहने लगे, फिर कुछ काल के बाद और कोई आ गया। क्या कहते हैं, विशेष 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 पुरुषों में गिनते होते हैं। नहीं नहीं, वो 63 अलग
और 100
महापुरुष में लेते हैं, विशिष्ट पुरुषों में गिनते ना, उसमें तो रुद्र भी गिनते हैं, कहकर गिनते सब कुलकर नहीं भी हो गए तो देव में जाएंगे, भोग भूमि के जो नियम से दे। अरे भोग भूमि वाले हैं, शाइक है, शाइक है। अभी लास्ट में उत्पन्न हुए वो अभी आदिनाथ जो लास्ट में उत्पन्न हुए हैं और मोक्ष गए, उनकी बात छोड़ो, वो तो इस काल में हुआ। ये हुंडाव सिरपिन में ऐसा हुआ कि जो तीर्थंकर हुए वो तीसरे काल के अंत में हुए, वो भी क्षाई के साथ जन्मे ना, परंतु वो क्षाई के साथ जन्मे हैं, वो कहाँ से आए हैं, देव से। और वो एक्चुअली वो तो कर्मभूमि जैसे, क्योंकि वो भोगभूमि में तो जन्मते नहीं कोई देव, यानी कर्मभूमि सदृश परिस्थिति जल्दी चालू हो गई, ऐसा हम उसको समझ सकते उसको। परंतु जो भोगभूमि के जीव है वो नियम से देव में चले जाते हैं, सौधर्म ईशान में, वो भी ऊपर जल्दी मोक्ष
है।
आपको फास्टेस्ट चाहिए ना, हम तो कहीं किसी भाव में जाने की करते, अपने अंतर में जाने की सोचते
नहीं।
कुछ भी हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो सोचने से कुछ नहीं मिलता है, हर एक की अपनी अनादि अनंत परे निश्चित है कि नहीं है। किस जो वो उस कोई जल्दी जाता है इसलिए उसको वहां से जाना चाहिए क्या, समय तो प्राप्त करने पर अभी स्वयं आत्मा ही है और बस अपने आत्मा में स्थिर रहना और कुछ नहीं करना है, कहीं भी जाओ वो तो मार्ग उसके हाथ में है और अपना अपना पर्यायों का क्रम निश्चित है। अब उसको उसमें मैं ऐसा करूं तो वहां के जाऊं फिर मैं जल्दी जाऊं, ऐसे कोई वहां उतावली नहीं रहती
है।
हाँ, ये कहाँ से कहाँ चले गए हम भोग भूमि में। हाँ, तो कुलकर अवधि दर्शन यानी बाद में ज्यादा टाइम बच्चे रहने लगे, फिर उनको कैसे संभालना उसकी ट्रेनिंग दे दी कुलकरों ने आगे आगे वाले, फिर वो तो लास्ट वाले नाभिराय हुए ऋषभ देव के पिताजी। तो वहां पर भी ये सारे जो ना क्षत्रिय कुल वाले कहते उसको, कुलकरों को, उस जमाने में कोई कुल नहीं थे, फिर भी आगे चलकर उनके कुलों में उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय बनने वाले हैं, इसलिए कुलकरों को भी क्षत्रिय कह दिया जाता है उपचार से, क्योंकि उन्हीं के पुत्र 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 आगे चलकर क्षत्रिय होने वाले, अभी उनका क्षत्रिय कुल वहां से उत्पन्न हो गया, पहले तो नहीं थे ना, ये चार वर्ण तो बाद में उत्पन्न हुए, भरत ने किया ना, तो इसलिए उन कुलकरों को भी क्षत्रिय कहा कहने में आते, बस इतना ही। तो फिर बाद में तो क्या हुआ, तो पहले तो पुत्र जन्मते थे तो माँ बाप तो शरीर विलीन होता था, अब पुत्र जन्मते थे तो वो तो कॉर्ड होती है ना, प्लेसेंटा कॉर्ड वो सब, अभी वो तो कैसे करना, प्रसूति कैसे करना, उसका भी ट्रेनिंग उन्होंने, नाभिराय नाम क्यों लिया, नाभि रहने तो बच्चे के नाभि से वो तो कॉर्ड जो रहती है प्लेसेंटा, तो उसको कैसे बांधना कैसे करना, तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स का साइंस तब से डेवलप है मालूम है। अम्बिलिकस नाभि यानी और भी बीच बीच में ऐसे घोड़े की सवारी वगैरह वाहन का उपयोग करने लगे अनेक कुलकरों ने, यानी जीवन पद्धति सिखाई। फिर आगे वो असी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार कला वगैरह ये छह जो है इसके द्वारा अपना यानी अर्निंग करके फिर कैसे जीवन करना वो बात आगे चल के उन्होंने सिखाई। भरत और आदिनाथ को भी उपचार से कुलकर कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी वो तो कुलकर है ही नहीं मगर उनको उपचार से क्योंकि उन्होंने भी नई नई बातें अनेक सिखाई लोगों को। चलो अभी आगे सम्यक दृष्टियों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए यानी सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जहाँ यहाँ तो ज्ञान मार्गणा चल रही थी। ज्ञान मार्गणा में मतिशुद्ध अवधि ज्ञान को लिया, वैसे दर्शन मार्गणा की अपेक्षा अवधि दर्शन में होगा और वैसे ही सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा सम्यक दृष्टियों में होगा। विशेष यह है कि साता वेदनीय का ओघ के समान भंग जानना चाहिए। यहाँ साता असाता का एक समय भी घटित किया था। सम्यक दृष्टि में ओघ के समान भंग जानना चाहिए। यानी कैसे लेना साता का कंटिन्यूस बंध उत्कृष्ट कैसे होगा कि उन्होंने जल्दी से जल्दी सम्यक तो संयम प्राप्त किया। एक करोड़ पूर्व की आयु है और संयम और श्रेणी चढ़ी क्योंकि संयम भी धारण किया तो छठा सातवा तो छठे में आने पर असाता का बंध हो सकता है। तो सातवे के ऊपर हमेशा रहने के लिए क्या श्रेणी तो अंतर्मुख की होती है तो क्षपक श्रेणी चढ़ी और तेरहवे में आ गए तो कंटिन्यूस साता का बंध चला तो कुछ कम करोड़ पूर्व तक हो जाएगा। तो ये उसको अभिनव मतिशुद्ध अवधि में क्यों नहीं लिया, समय दृष्टि में क्यों लिया? हाँ 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 तो मतिशुद्ध अवधि लेने से क्या फायदा, उसको चढ़ाओ ना श्रेणी, उसका केवल ज्ञान हो जाएगा, मार्गणा बदल जाएगी, मतिशुद्ध अवधि का केवल ज्ञान हो जाएगा तभी इतने लंबे काल तक साता का बंध होगा, नहीं तो इतना लंबे काल कैसे होगा उसका, क्योंकि श्रेणी तो अंतर्मूर्त की होती है। इतना लंबा काल हमने रखा साता का बंध करते हुए, तेरहवें गुणस्थान का लंबा काल लिया हमने और वहां ज्ञान कौन सा है, तेरहवें गुणस्थान में ज्ञान कौन, हाँ, और अपनी मार्गणा कौन सी चल रही थी, तो मतिशुद्ध अवधि में साता का बंध अंतर्मुर से ज्यादा नहीं रखा। यहाँ सम्यक दृष्टि है ना, हाँ, तो उसमें तो कंटिन्यूस यानी केवल यानी भी सम्यक दृष्टि तो है ही, तो उनमें साता का लंबाई काल का कुछ कम पूर्व कोटि का बंध ले लिया। क्यों कहा इतने हमको सोचना है, मन परे ज्ञान में, अब मन परे ज्ञान के गुणस्थान कौन से वो पहले हम मन में निश्चित करेंगे। हाँ मंजू बहन,
छह से बात
बहुत अच्छा। मन परे ज्ञान में पांच ज्ञान आवरण, छह दर्शनावरण, क्योंकि अभी छह ही दर्शनावरण है ना, पहले तो वहां तो बंद चुका था, चार संज्वलन, पुरुष वेद, भय जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रीय जाति, वैकृत तेजस्कारमन शरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, वैक्रिक अंगोपांग, वर्णचार, देवगति प्रायज्ञान पूर्वी, अगुरु लघुचार, प्रशस्त व्यागति, त्रसचार यानी त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, सुभोग सुस्वर आदेय निर्माण तीर्थंकर, उच्च गोत्र और पांच अंतराय का जघन्य एक समय, और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि बंद काल है। तो जघन्य एक समय कैसे घटित होगा? मन परे ज्ञानी में, हाँ पांच ज्ञानावरण में तो श्रेणी चढ़ते उतरते समय, तो ये कौन सा मन परे लेना? रुजुमति, विपुलमति वाले का तो मोक्ष होगा, मरण नहीं होगा। तो एक समय कैसे होगा? अंतर्मूर्त होगा,
मरण नहीं होगा ना।
मरण तो ये भी नहीं, रुजुमति उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे और एक समय के लिए इनका बंद किया और मरकर दे हुए, तो वहां मन परिज्ञान तो नहीं रहा, तो एक समय के लिए मन परिज्ञानी ने बंद किया। ऐसे भी ले सकते हैं क्या अरविंद भाई के, जब बंद कर रहा था तब मन परिज्ञान उत्पन्न हुआ और ऊपर चढ़े? मन परिज्ञान रहेगा परंतु बंद रुकेगा, कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है ना मन परिज्ञान, क्या नहीं? अवधि ज्ञान तो हमने देखा था बारहवें के अंत में भी प्राप्त हो सकता है, पहले बात आई थी ना अवधि ज्ञान के लिए, प्राप्त ही हुआ अवधि ज्ञान बारहवें, वो ज्ञान की प्राप्ति कहीं पर भी हो सकती है ना। हाँ ऐसा ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, परंतु रुजुमति वाला उसके और भी भव हो सकते हैं, परंतु विपुल मति वाला जो है ना मन परिज्ञानी वो उसी भव में मोक्ष जाते हैं, तो उनमें एक समय घटित नहीं होगा। यहाँ तो हम मन परिज्ञान इन जनरल कॉमन की बात करें, ये बहुत सारी तो बातें, यानी प्रकृतियां कौन सी है आठवें गुणस्थान में जिनकी बंद विच्छित होती है, तो ऊपर चढ़े फिर वापस आए, एक समय के लिए बंद किया और देव में चले गए, तो एक समय होगा। और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि बंद काल है, कुछ कम मन परिज्ञान उन्होंने अर्लीस्ट प्राप्त किया है, मरण नहीं ना, उसको मोक्ष कराओ ना, अंतर्मूर्त में मोक्ष कराओ, लास्ट में तेरवा चौदवा गुणस्थान अंतर्मूर्त वाला रखना, या मरण भी करना है तो अंतिम समय तक वो रहेगा उनके, तो ज्यादा काल हो जाएगा, काल ज्यादा हो जाएगा। आठवें साल में कोई संयमी हो सकते, आठवें साल में संयम प्राप्त किया, मन परिज्ञान प्राप्त किया, पूर्व कोटि की आयु में रहे, तो इतना लंबा काल मन परिज्ञान के साथ इनका बंद किया। पृथक तो वर्ष तीर्थंकर के लिए होता है, बाकी के लिए अभी इसमें उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति भी ली थी, हाँ ली है, तो तीर्थंकर प्रकृति भी वो मरण वाले की अपेक्षा से ले सकते हैं। विशेषार्थ उन्होंने दिया है, एक कोटि पूर्व की आयु वाले किसी मनुष्य ने गर्भ काल से लेकर आठ वर्ष अंतर्मूर्त प्रमाण काल व्यतीत करके, जो आठ वर्ष गिनते हैं ना तो उसके आयु के शुरू से गिनते हैं, तो गर्भकाल भी उसमें गिनना, सकल संयमी बन मन परे ज्ञान को उत्पन्न किया, यानी संयमी ने वो मुनि अवस्था धारण की, तीन कषाय चुकड़ी का भाव पूर्वक हित रखता हुई सातवां गुणस्थान से फिर छठा सातवां चला, उस समय उनको मन परे ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन भर मन परे संयुक्त रहा, किंतु मरण के अंतर्मूर्त रहने पर नीचे के गुणस्थान में आकर मरण किया। इस प्रकार देशों न पूर्व कोटि काल है, ये मरने की बात क्यों, ये नीचे के गुणस्थानों में क्यों लाया? गड़बड़े
तो नीचे नहीं आ सकते हैं,
नहीं आ सकता उसकी बात नहीं, परंतु اس کو نیچے کے گنستھانوں میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ من پر جان ہی تھے, اسی اوستھا میں مرن ہو سکتا ہے نا. نہیں وہ وپل متی کے لیے کیول جان کی بات ہے, یہ رجومتی والا تو اس کے اور ایک بھو بھی ہو سکتے ہیں نا. تو اس کو مرن تک من پر جان ہی رہے. مرن کے انتر مورت رہنے پر لکھا میں آ کر مرن کیا. یعنی وہ جیون کے انت تک من پری جانی رہے سام دیکھ. اب اسی من پری جان کی پرارپنا چل رہی ہے. ساتا اساتا ویدنی چار نو کشائے. مرن تک کوئی ان کا گنستھان نہیں چینج ہوتا. وگرہ گتی میں پہلے سمے میں چوتھے میں آتے. ساتا اساتا ویدنیا چار نو کشائے. بیج گپسا اوپر لیے. ہاسیہ رتی شوکا رتی لینا یہاں پر. کیونکہ پروش وید بھی اوپر لے لیا تھا انہوں نے, باقی انیہ دو وید کا تو بندہ ہی نہیں ہے. خیال میں یہی بات سمے درشٹی ہے, مہراج ہے, پروش وید کا بندہ ہو رہا ہے. بیج گپسا تو کنٹینیوس بند میں لے لیا, اب باقی اتنے ہی رہ گئے نا. تو کہتے ساتا اساتا چار نوکشائے آہارک دوک ستھرادی تین یوگل کا جگنیا ایک سمے اتکرشٹ انترمورت بند کال ہے. آہارک دوک کا اسے سمجھنا اپشم شرینی اتر کے بند شروع ہوا تھا ایک سمے میں برن ہوا, انیتھا آہارک کا تو انترمورت بند ہوتا ہے. ستھرادی تین یوگل ہمیں دیکھ رہے تھے, ستھر شبھا اور یش کیرتی والا یوگل, جگنیا ایک سمے اور اتکرشٹ انترمورت بند کال ہے. کیونکہ ان میں بھی استھیرادی یوگل میں جو ہم کہتے ہیں چھٹے میں ہے تو ایک ایک سمے میں اس کا بند چینج ہو گیا, ایسے ہو سکتا ہے. دیوایو کا اوگ کے سمان ہے, یعنی انترمورت تو بند ہوگا. اس پرکار سنیت تتھا سامائک چھیدوپستھاپنا سنیت میں جاننا چاہیے. اب یہ سنیم مارگنا کی اپیکشا بات کرے, ابھی تک ہم نے گیان مارگنا کی اپیکشا بات کی تھی. تو سنیم مارگنا کی اپیکشا بھی ایسا ہی سمجھنا اتنا وشیش ہے کہ سنیم مارگنا میں ساتا ویدنی کا اوگوت جاننا چاہیے, یعنی سنیمیوں کے ساتویں گنستان کے اوپر تو ساتا کا ہے بندر, تو کنٹینیوس کیونکہ وہاں من پری جانی یا اودھی جانی لیے تھے. اب یہاں تو سنیم ہی ہے, کیول جانی ہوئے تو بھی سنیم تو سنیم ہی ہے نا, کون سا سنیم ہے اس میں چینج نہیں, سنیم ہی ہے. اتنا ہی دیکھ, پہلے بھی سنیم ہی تھے بعد میں بھی سنیم ہی رہے. اوگوتے نے وہ کنٹینیوس کچھ کم پورو کوٹی بن جائے گا. پریہار وشدھی سنیتوں تتھا سنیتا سنیتوں میں اسی پرکار جاننا چاہیے. یہ پریہار وشدھی سنیت یاد ہے کیا, گنستھان یاد ہے ان کا؟ ہاں ہاں چھٹا ساتواں. وہ تو اس کی کنڈیشن ہم نے دی, 30 سال تک سکھی جیون گرہست جیون بتایا, پھر منی دیکھا انگیکار کی, کیولی کے چرن میں پاد مول میں وہاں پورو کوٹی سوری پرتھکو ورش تک 7-8 سال, 3-8 سال تک پرتیاخان پوروک ابھیاس کیا, تو ان کے یہ پریہار وشدھی سنیم پراپت ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ بندے کی بات ایسی ہوگی. 72 پیج میں لکھتے ہیں پریہار وشدھی سنیم کے وشے میں خدا بند میں لکھا ہے سنجمانو آدینا, یعنی سنیم کی اپیکشا, سنیم انواد کی اپیکشا نے سنیم مارگنا کی اپیکشا سے سنجدا سنیت, یعنی سبھی سنیم ہی اس میں انکلوڈ ہوئے تو سنیم کہیں گے سنیم ہی. پریہار سدھی سنجدا یعنی پریہار وشدھی سنیت, سنجدا سنجدا سنیتا سنیت کے وچیرم کالا دو ہونتی کتنے کال تک رہتے ہیں, جہن دینا انتم اتم یعنی سنیم کم سے کم کتنے کال تک رہے گا, تو انترمور پریہار وشدھی بھی انترمورت تو رہے گی رہے گی کیونکہ پراپت کیا انترمورت میں آیا اور اوپر چڑھا. اور سنیم اسنیم کوئی پانچوں گن سان پراپت کرتا ہے تو انترمورت تک تو رہے گا ہی رہے گا منیمم. اور اپکس سے نا پوو کوڑی دے سنا, اتکرشٹ کال کتنا ہے یہ پانچویں میں رہنے کا, پورو کوٹی میں کچھ کم کیونکہ ارلیسٹ کب پراپت کرتا ہے آٹھویں سال کے بعد, اور پورو کوٹی کی آیو والا پانچویں گنستان میں رہے یہ ہو سکتا ہے یا آٹھویں سال کے بعد سنیم پراپت کیا اتنے سال تک رہا, یا پریہار وشدھی پراپت کی کتنے سال میں, آٹھ سال میں, اڑتیس سال میں تو پراپت کی, تو پھر اتنے کم کرنا پورو کوٹی میں سے. آگے لکھتے ہیں یہ دھولا کا نام خدا بندہ, جو ہے اس کا کارن نہیں ہوتا. ان کا پرشن ہے سکھی جیون بتایا تیس سال تک ایسا کیوں کارن ہے, اس کا کارن کیا ہے؟ ابھی پورو کوٹی والا تیس سال میں کہاں شادی کرے گا, سکھی جیون بتایا یہ تو کنڈیشن ہے اس کی بس, ابھی اسی کے بعد بتائیں گے. سنیم مارگنا کے انوسار, ہاں سنیت پریہار شدھی سنیت تتھا سنیتا سنیت کتنے کال تک رہتے ہیں, کم سے کم انتر مورت کال پرینت انتر انتر ہے کیوں رہتے ہیں بھائی, کیول چرم کالا دو ہونتی جہنے نے انتم مورت, کم سے کم انتر مورت کال تک ہے رہتے ہیں چاہیے, انتر ہے نہیں رہتے ہیں. उत्कृष्ट से कुछ कम पूर्व कोटि है, यानी वो अंतर शब्द निकालने हैं. धवला टीका में लिखा है गर्भ से लेकर आठ वर्षों से संयम को प्राप्त कर और कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक संयम का पालन कर वो मरकर देवों में उत्पन्न हुए मनुष्य के कुछ कम पूर्व कोटि मात्र संयम काल पाया जाता है. ये तो आसान है ना समझने के. इसी प्रकार परिहार शुद्धि संयत का भी उत्कृष्ट काल कहना चाहिए. विशेष इतना है कि यह लिखा है सर्व सुखी होकर 30 वर्षों को बिताकर पश्चात वर्ष पृथक्व से तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढ़कर, ये बीच में लिखना रह गया 30 वर्षों को बिताकर मुनि दीक्षा अंगीकार कर, मुनि होकर चाहिए ना, वो सामायिक छेदोपस्थापना वाले हुए थे बाद में परिहार विशुद्धि हुए, हाँ इन्हें देखो 30 वर्षों को बिताकर मुनि दीक्षा अंगीकार करके पश्चात वर्ष पृथक्व से तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढ़कर पुनः तत्पश्चात परिहार शुद्धि संयम को प्राप्त कर और कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहकर देवों में उत्पन्न हुए जीव के उपर्युक्त काल प्रमाण कहना चाहिए। इस प्रकार 38 वर्षों से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिहार शुद्धि संयम का काल कहा गया है। कोई आचार्य 16 वर्षों से और कोई 22 वर्षों से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण कहते हैं। इसी प्रकार संहिता संयत का भी उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। कुछ कम में वो कुछ वेरिएशन समझते हैं। अब संहिता संयत में विशेष है अंतर्मूर्त पृथक्त्व से कम, अश्विन में आपको नहीं बोलना है, पूर्व कोटि वर्ष संयमा संयम का काल होता है। लक्ष्मी आप बताएंगे, संयमी के लिए तो 8 वर्ष घटा दिए और संयमा संयम के लिए अंतर्मूर्त कुछ अंतर्मूर्त घटा है, क्यों? बहुत अच्छा, समूर्षण तिरियन चौंके वेदक सम्यक तो प्राप्त होता है, पांचवा गुण स्थान प्राप्त होता है। समूर्षण इसलिए कहा कि गर्भजों में गर्भ का काल और फिर बाहर निकलने के बाद कितने काल तक समय तो नहीं हो सकता। समूर्षण वो कौन से? सादी मिथ्या दृष्टि थी उनकी सत्ता में, वो तीन मदर्शन उनकी प्रकृतियां पड़ी थी। पूर्व भव में कभी समय तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में गए थे, समूर्षण तिरियंच करके उत्पन्न हुए है पंचेन्द्रिय संगी पंचेन्द्रिय पूर्व कोटि वाले। एक अंतर्मूर्त तो पर्याप्ति में गया, एक अंतर्मूर्त विशुद्धि में गया और एक अंतर्मूर्त में सम्यक प्राप्त किया। तीन अंतर्मूर्त में तो पृथक्व अंतर्मूर्त के, तो वहां उन्होंने डायरेक्ट पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया और पूर्व कोटि आयु तक पांचवे गुणस्थान में रहे। इसलिए संयमा संयम के बारे में, क्योंकि तिरियन चौंको लिया यहां पर, अंतर्मूर्त पृथक्त्व से कम पूर्व कोटि वर्ष संयमा संयम का काल होता है। अब खुद्दाबंध का कथन। सामान्यतया संयम यानी संयम इन जनरल, सामान्य संयम, फिर विशेष कौन से लिए? परिहार विशुद्धि संयम, संयमा संयम सामान्य की अपेक्षा कहा गया है। महाबंध का प्रतिपादन संयम परिहार विशुद्धि संयम संयमा संयम में बंधने वाले कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा लिया गया। वहां तो उस संयम का काल बताया है, अब यहां उन संयमों में प्रकृति बंधों की बात चल रही है। संयम भले कंटिन्यूस हो, क्या विशिष्ट प्रकृति सतत बनती है? तो कहते हैं स्थिर अस्थिर आदि तो पलटती रहेगी, तो अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग कथन होता है, इसलिए इसमें प्रकृतियों की भी ग्रुप बता के फिर बात की है। विशेष ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है। ध्रुव प्रकृति याद है ना? हाँ, अभी इन्होंने संयतों में तो ध्रुव बंदी में 47 नहीं लगेगी, ज्ञानावरण की 5 होगी, दर्शनावरण की 6 होगी, जो यथायोग्य जो है। किंतु असंयतों में संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमी पहला दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान। ध्रुव प्रकृतियों का बंध काल मत्य ज्ञान के समान है। अभी इसका चर्चा करते हैं। संयम मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद है प्रेरणा भेद? आप गिनाओ गिनाओ। असंयम के पहले असंयम, हाँ असंयम, फिर देश संयम, हाँ
संयम असंयम,
अरे देश संयम,
हाँ
वही एक ही है, असंयम और संयम असंयम दो हो गए। हाँ बीच में दूसरा कोई
सामायिक क्षेत्र,
हाँ परिहार सूक्ष्म कितने सात भेद हुए, उसमें से संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमियों में यानी चौथे गुणस्थान तक, तो चौथे गुणस्थान तक हो सकता है सम्यक दृष्टि, हो सकता है मिथ्या दृष्टि। जब हमको लंबा काल घटित करना है तो मिथ्या तो में लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं ध्रुव प्रकृतियों के बारे में? असंयतों में ध्रुव प्रकृतियों का बंध काल मति अज्ञान के समान, मत्य ज्ञान यानी मति अज्ञान यानी मिथ्या मति ज्ञान, कुमति ज्ञान। तो ध्रुवबंदी कितनी काल तक लगातार होगी असंयतों में? तो मिनिमम तो हम कहेंगे अंतर्मूर्त असंयत, पहले संयमी था, एक अंतर्मूर्त के लिए असंयमी हो गया, फिर संयमी, तो असंयम में रहते हुए उन्होंने उतनी बंद किया। अभी हम कहेंगे कुमति ज्ञान की बात करेंगे, मिथ्या दृष्टि की, क्योंकि वो भी असंयमी है। तो ये जो ध्रुवबंदी प्रकृति है, ज्ञान आवरण दर्शनावरण वगैरह, तो उसमें तीन काल बताए थे, अभव्यों में अनादि से लेकर अनंत काल तक। भव्यों में अनादि से शांत हुए जब श्रेणी चढ़ के ऊपर गए तब, और दूसरा है सादी और शांत। अभी असंयों में भी सादी शांत कहने के लिए उपशम श्रेणी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असंयत में आए तब से हम घटित करेंगे, संयम में से असंयम में हो गए तो उनके सादी शुरू हुआ। वही जीव संयमी हुए तो उनकी मार्गणा बदल गई। ख्याल में क्या कहा? असंयम हमारा क्राइटेरिया है, तो असंयम का मिनिमम काल कितना रहेगा? तो एक अंतर्मूर्त रहेगा, तो वो अंतर्मूर्त घटित होगा। हमें लंबा काल घटित करना है तो ये ध्रुव, अभी हम सादी शांत काल लंबा चालू करना है, सादी काल, अनादि अनंत होता है उसके बाद भूल जाओ। तो सादी शांत असंयम का काल कितना होगा लंबा? असंयम का सादी होगा यानी संयम से वो असंयम में आया हुआ है, तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल पर थोड़ा कम। हेल मी नहीं, संयम से लेकर असंयम में आए, कभी तो संयम प्राप्त किया था, अब असंयम में आया है और लंबे काल तक असंयम में रहा, तो कुछ कम अर्ध पुद्गल पर। ये बात फिर कल ले लेंगे, ध्रुव प्रकृति उनका बंद करता वहां से।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो